नकुल और नायरा ने प्रणाली की माँ के साथ रिपोर्टर्स को सिंघानिया हाउस भेज दिया था। अब वे सब मिलकर इशिका पर इल्ज़ाम लगाने लगे थे कि उसकी वजह से प्रणाली की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई। प्रणाली की सुसाइड करने की वजह भी वे इशिका को ही बता रहे थे। अभिमन्यु ने जब लाइव ब्रॉडकास्ट में ये सब सुना तो वो तुरंत बिना सोचे समझे इशिका का साथ देने के लिए सिंघानिया मेंशन के लिए चला गया था। अचानक ही अभिमन्यु ने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया क्योंकि इशिका स्टेटमेंट देने के लिए आगे आई थी। इशिका के चेहरे के भाव सख्त थे। वो आगे आई और बोली, चलिए आप लोग मेरे और अभिमन्यु राजवंश की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने के लिए इतना ही एक्साइटेड हो रहे हैं तो मैं भी थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ। वैसे भी आप लोग तो फ्री ही रहते हैं। इशिका ने बातों ही बातों में सभी रिपोर्टर्स को ताना दिया। इशिका की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। इशिका हमेशा कम बोलती थी और किसी को क्लैरिफिकेशन देने के मामले में अच्छी नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इशिका उसकी वजह से दबाव में आ गई है। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी इशिका ने आगे कहा, अच्छा क्या आपने बचपन में कभी घर घर खेला है? हाँ, रिपोर्टर्स ने एक सुर में जवाब दिया। अच्छा, जब आप बचपन में घर घर खेलते थे तो आपने कभी किसी लड़की से खेल खेल में वादा किया है कि बड़े होने पर मैं तुमसे शादी करूंगा, हमारे बच्चे होंगे, एक बड़ा सा घर होगा? इशिका ने आगे पूछा। रिपोर्टर्स के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। खेल खेल में बच्चे अक्सर ऐसा वादा कर देते थे। लेकिन तभी एक रिपोर्टर आगे आकर बोला, आप मिस प्रणाली के बारे में ऐसा नहीं कह सकती हैं, वो कोई खेल नहीं था, उन्होंने मिस्टर राजवंश की जान बचाई थी। हाँ, तो मान लिया उसने उनकी जान बचाई थी, और उनकी जान बचाने के चक्कर में क्या प्रणाली को डिप्रेशन हो गया, वो इतनी बुरी तरह से बीमार हो गई थी? इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। इशिका अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने प्रणाली की माँ की तरफ देखकर कहा, आप कुछ नहीं जानते हैं, जब 4 साल पहले मिस्टर राजवंश को प्रणाली मिली थी तब उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता था, यहाँ तक कि उसे किसी और को बेचने तक की प्लानिंग की गई थी। सो प्रणाली की मॉम, उस वक्त आपका प्यार कहाँ गया था? प्रणाली की माँ झूठा रोने का दिखावा करते हुए बोली, मैं उसे बेच नहीं रही थी, बस उसकी अच्छी जिंदगी चाहती थी, इसीलिए एक अमीर आदमी से उसकी शादी करवा रही थी, बस बदले में वो हमें थोड़े पैसे देने वाला था। इशिका ने उसकी तरफ देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाया और फिर रिपोर्टर से बोली, क्या आप लोग जानते भी हैं कि प्रणाली इस तरह से बीमार कैसे हुई? इशिका का गुस्सा बेकाबू हो गया था। वो आगे बोली, प्रणाली पिछले कई सालों से बीमार है क्योंकि उसके साथ मारपीट की गई थी, उसे टॉर्चर किया जाता था। ये तो अच्छा हुआ जो मिस्टर राजवंश ने उसे वहां से निकाला और उसका इलाज करवाया, कोई आम इंसान ऐसा नहीं करवा पाता। वो लंदन में थी और उसका बेस्ट मेंटल हेल्थ केयर में इलाज हो रहा था, इतना खर्चा कोई नहीं उठाता। यहाँ आने पर भी अभिमन्यु ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। आप लोग चाहते हैं कि ऐसी हालत में अभिमन्यु उससे शादी करे, वो लड़की जो सुसाइड करने की कोशिश करती रहती है? प्रणाली ने पहले भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अभिमन्यु ने हर बार उसे बचाया ही है, फिर आप अभिमन्यु को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? क्या गारंटी है कि कल को अभिमन्यु ने उससे शादी कर ली और उसकी कोई बात नहीं मानी तो फिर वो अपनी मनमानी करवाने के लिए सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगी? फिर भी क्या आप अभिमन्यु को जिम्मेदार ठहराएंगे या प्रणाली की बीमारी को? इशिका ने एक सांस में काफी कुछ बोल दिया था। रिपोर्टर्स चुप हो गए थे। इशिका प्रणाली की माँ की तरफ मुड़कर बोली, आप बार बार बोल रही हैं कि आपकी बेटी को इंसाफ चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उस बेटी की माँ बनने के लायक भी हैं? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी को मिस्टर राजवंश ने शादी का वादा किया था, उन्हें उससे शादी करनी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। प्रणाली की माँ ने जवाब दिया, आप सबूत की बात कर रहे हैं तो आपके मोहल्ले के किसी भी घर में जाकर पूछेंगे तो वे बता देंगे कि आप प्रणाली के साथ कैसा बिहेव करती थी। बस बहुत हो गया, मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने वाली हूँ कि आपने अपनी बच्ची को टॉर्चर करके उसे बीमार कर दिया। इशिका ने जवाब दिया और उसने तुरंत इस वक्त क्रिस्टल को कॉल किया। इशिका की कॉल करने के 15 मिनट बाद पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और प्रणाली की माँ को अरेस्ट करके ले गई। जाते वक्त भी प्रणाली की माँ इशिका और अभिमन्यु को भला बुरा कह रही थी। उसके जाने के बाद एक रिपोर्टर आगे आया और इशिका से पूछा, मानते हैं कि मिस प्रणाली कपूर की बीमारी की वजह मिस्टर अभिमन्यु राजवंश नहीं है, लेकिन आगे का क्या? मिसेज राजवंश, ये सच है कि आप उनके रिश्ते के बीच में आई हैं। आपके आ जाने के बाद मिस्टर राजवंश पूरी तरह प्रणाली को भूल गए हैं। क्या वो लावारिस की तरह एक पागलखाने में पड़ी रहेगी या उसका कोई इलाज भी करवाएगा? इशिका की इमेज तो क्लियर हो गई थी, लेकिन अब लोग अभिमन्यु पर सवाल खड़ा कर रहे थे। अभिमन्यु के लिए यही काफी था कि इशिका को अब लोग भला बुरा नहीं कह रहे थे। तभी इशिका ने जवाब में कहा, आप चिंता मत कीजिए, प्रणाली की दवाइयाँ नहीं रुकेंगी और उसका इलाज उसी तरह एक अच्छे हॉस्पिटल में होगा। मैं मिस्टर राजवंश और प्रणाली के बीच में नहीं आऊंगी क्योंकि हमने तलाक लेने का डिसीजन लिया है। जैसे ही इशिका ने सबके सामने तलाक का अनाउंस किया, अभिमन्यु का दिल मानो फटकर बाहर आने को हो गया था। अभिमन्यु ने गुस्से में स्टेयरिंग पर एक जोरदार पंच मारा, तुमने सबको बता दिया कि हम डिवोर्स ले रहे हैं लेकिन अभी हम अलग नहीं हुए हैं, तुम्हें सबको बताने की क्या जरूरत थी ईशिका? अभिमन्यु गुस्से में बड़बड़ाया। तभी उसे ईशिका का मैसेज रिसीव हुआ, आज 2 बजे मिलते हैं, बिना किसी बहाने के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कोर्ट पहुंच जाना, ईशिका ने मैसेज में लिखा था। रिपोर्टर्स अब संतुष्ट होकर वहां से चले गए थे। ईशिका भी अंदर आ गई थी और अभिमन्यु के जवाब का इंतजार कर रही थी। ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। अभिमन्यु का जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और जैसे तैसे गाड़ी को वापस राजवंश हाउस लेकर गया। जैसे ही अभिमन्यु वहां पहुंचा, ड्राइवर उसके पास दौड़कर आया और बोला, मिस्टर राजवंश, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? अभिमन्यु ने उसकी तरफ घूर कर देखा। ड्राइवर ने शायद जल्दबाजी में उसे ज्यादा ही कह दिया था। उसने तुरंत अपने लहजे को नरम किया और आगे बोला, वो सीनियर राजवंश सर ने कहा था कि ये पार्सल किसी घमंडी बंदर के लिए है, आप जिसका सालों से इंतजार कर रहे थे, बस तभी ये खास आप तक पहुंचाना था। घमंडी बंदर शब्द सुनकर अभिमन्यु चौंक गया था। उसने ड्राइवर से फिर से पूछा, क्या कहा तुमने? इस नाम से उसे सिर्फ दिग्विजय ही बुलाते थे, या फिर अभिमन्यु ने ये नाम उस लड़की को बताया था जिसने उसकी जान बचाई थी? जब अभिमन्यु किडनैप हुआ था तो उसे डर लगता था कि उसकी पहचान जानने के बाद बाकी लोग भी उसे मारने के लिए उसके पीछे ना आ जाएं, इसीलिए उसने अपना असली नाम उस बच्ची को नहीं बताया था। उसके लिए वो बच्ची प्रणाली थी। अभिमन्यु ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, प्रणाली ने मुझे कब पार्सल भेजा होगा? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और फिर ड्राइवर से पूछा, ये पार्सल कब आया था? क्या दादाजी मुझे पहले इसे देने भूल गए थे? ये परसों रात को आया था सर, जो भी देने आया था उसने बोला था कि वो आपके हाथ में ही देगा, तब बड़े सर ने मुझे खास आपके हाथ में देने के लिए कहा था, ड्राइवर ने जवाब दिया। ठीक है, अभिमन्यु ने इतना ही कहा और अंदर जाने लगा। अंदर जाते हुए वो खुद से बोला, तो क्या प्रणाली ने सुसाइड करने से पहले मुझे लेटर लिखा था? वो मुझे कॉल करके भी तो बता सकती थी। अभिमन्यु को अभी भी यही लग रहा था कि वो पार्सल प्रणाली नहीं भेजा था।
अभिमन्यु अपने कमरे के अंदर आया तो वो पार्सल वहां पर रखा हुआ था। उसने खोलकर देखा तो उसमें एक बॉक्स था जिसे काफी मजबूती से पैक किया गया था और साथ में एक लेटर। तो मरने से पहले वो एक आखिरी मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहती थी, क्या फर्क पड़ता है, वही रटी रटाई बातें उसे बोलनी होंगी, अभिमन्यु ने कड़वाहट से कहा और उसे वापस नीचे रख दिया था। तभी उसकी नज़र वहां पास में रखे उसके और ईशिका के मैरिज सर्टिफिकेट पर गई। अभिमन्यु को बुरा लग रहा था कि ईशिका ने सबके सामने उनका डाइवोर्स अनाउंस कर दिया था। उसने एक नज़र मैरिज सर्टिफिकेट पर ईशिका की तस्वीर को देखा। अभिमन्यु मैरिज सर्टिफिकेट की तरफ देख रहा था तभी वहां कमरे में वसुधा निवेदिता के साथ अंदर आईं। वसुधा को देखते ही अभिमन्यु ने तुरंत सर्टिफिकेट को नीचे रखा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, दादी मुझे बुला लिया होता? बच्चे, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें तलाक देने जा रही है? वसुधा ने उदास होकर पूछा। अभिमन्यु ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से उसकी मुठ्ठियाँ कस गई थीं। वसुधा अभिमन्यु के पास बैठी और बोली, तुम इस तरह 2 नावों पर सवार होकर नहीं चल सकते हो। अगर तुम प्रणाली को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने का भी हक नहीं है। कभी सोचा है उसके दिल पर क्या बीतती होगी जब आधी रात को उसका पति उसे छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाता है? ऊपर से ये घरवाले उस पर सवाल खड़े करते रहते हैं। वसुधा की बातें सुनकर अभिमन्यु हैरान रह गया। एक वक्त था जब उनके तलाक की बात सुनकर वसुधा बीमार हो जाती थी। वो उन्हें पास लाने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन आज वो डाइवोर्स के नाम पर ईशिका को सपोर्ट कर रही थी। अभिमन्यु बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो बहुत इमोशनल हो रहा था। अभिमन्यु ने भारी आवाज में कहा, दादी आप अच्छे से जानती हैं कि आपके अलावा अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो ईशिका है, मैं उससे अलग नहीं होना चाहता हूँ। वसुधा ने अभिमन्यु के गाल पर हाथ रखा और कहा, बच्चे तुम बहुत इमोशनल हो, उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी वजह से उसकी मौत हो जाती तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अगर वो मर गई तो इससे तुम्हारे और ईशिका के बीच में दूरियां आ जाएंगी। अच्छा यही होगा कि अपनी पत्नी को आज़ाद करो ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वसुधा की बात सुनकर अभिमन्यु की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वसुधा ने उसके आंसू साफ किए और कहा, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, अगर किस्मत में तुम दोनों का साथ लिखा है तो वापस तुम दोनों एक हो जाओगे। लेकिन कैसे दादी, तलाक के बाद तो वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और अगर उसे मेरे बजाय किसी और से प्यार हो गया तो? मुझे तो सोचकर ही इतना बुरा लग रहा है, अभिमन्यु ने रुंधे गले से कहा। तो फिर ये सोच लेना कि तुम दोनों की किस्मत एक साथ नहीं है, वसुधा ने मजबूती से कहा और फिर वहां से चली गई। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में खड़ा हुआ और दीवार पर जोरदार घूंसा मारा, उसके हाथ पर खून आने लगा था। फिर उसकी नज़र मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ी। अभिमन्यु ने उसे उठाया, उसके और ईशिका के तलाक होने में बस कुछ घंटे का फासला था। तो 4 घंटे बाद तुम मिसेज राजवंश नहीं रहोगी, तुम ईशिका अभिमन्यु राजवंश नहीं रहोगी, अभिमन्यु ने सिसकते हुए कहा। अभिमन्यु को इतना गुस्सा आया कि वो टेबल पर सारा सामान उठाकर फेंकने लगा, उसमें वो ईशिका का भेजा हुआ बॉक्स भी था। किस्मत से बॉक्स खुल गया और अंगूठी उछलकर नीचे गिर गई। अभिमन्यु ने अंगूठी उछलने की आवाज़ सुनी तो वो उसके पास गया और उसे उठाया। उस अंगूठी को देखकर अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये रिंग यहाँ क्या कर रही है? प्रणाली ने कहा था कि उसकी माँ ने इस अंगूठी को बेच दिया है, अभिमन्यु ने आंखें बड़ी करके कहा। उस अंगूठी को देखते ही वो उसे पहचान गया था। जब प्रणाली ने अंगूठी के बेचने की बात कही थी, तब अभिमन्यु ने पृथ्वी के जरिए उस अंगूठी को सभी ज्वेलर्स की दुकान और बाकी जगह ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। वो वसुधा की अंगूठी थी जो उनकी माँ की तरफ से उन्हें मिली थी। अभिमन्यु उसे अपनी पत्नी को देना चाहता था। पृथ्वी ने रिंग को ढूंढ लिया था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अभिमन्यु हैरानी से बोला। तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले पार्सल से ये बॉक्स निकला था। ऊपर से वो पार्सल राजवंश विला आने के बजाय उसके पुराने घर पर आया था। अभिमन्यु जल्दी से उसके साथ आए लेटर को ढूंढने लगा। काफी सारे फाइल्स के बीच में उसे वो लेटर दिखा तो उसने कांपते हाथों से उसे खोला। वो हैंडराइटिंग प्रणाली की नहीं थी, लेकिन अभिमन्यु के लिए जानी पहचानी सी भी लग रही थी। वो जल्दी जल्दी उसे लेटर को पढ़ने लगा। हेलो जिद्दी दोस्त, उम्मीद है कि मेरा लेटर देखकर तुम परेशान नहीं होगे। मैं नहीं जानती कि इन सालों में तुमने मुझे याद किया या नहीं, या फिर कभी मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी। मैं तुम्हें आज ये लेटर इसीलिए लिख रही हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें मुझे ढूंढने की या उस वादे को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बचपन में तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आकर मुझसे शादी करोगे, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने शादी कर ली है और मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। याद है उस वक्त तुमने मुझे एक अंगूठी दी थी? वो मुझे बहुत कीमती लगी। शायद तुम्हारे खानदान की कोई निशानी हो, तो प्लीज़ आप उस अंगूठी को किसी ऐसे इंसान को दीजिएगा जो आपकी लाइफ में स्पेशल हो। याद है उस वक्त मेरा कोई नाम नहीं था, अब मुझे नाम मिल गया है। मेरा नाम इशिका सिंघानिया है। मैं अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख रही हूँ। कभी आप गोवा आओ तो हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। मैं आपको अपने पति से भी मिलवाऊंगी। याद है उस वक्त मैं अपने हिस्से का रात का खाना तुम्हें देती थी, लेकिन अब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा डिनर अरेंज करूंगी। लेटर पढ़ते ही अभिमन्यु को सब समझते देर नहीं लगी।